इस वक्त आप जो रूपरवर पैगाम सुनने को हैं, वो ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान के बानी और सीनियर पास्टर नईम प्रसाद आप तक पहुंचाएंगे। ये पैगाम आपकी जिंदगी, रवैये और हालात को यकसर तब्दील कर देगा। इस पैगाम को सुनने के बाद आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आपके शख्सी, खानदानी और क्लीसियाई रवैये बदल जाएंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।
लास्ट टाइम हमने दो प्रोफेटिक साइंस को स्टडी किया, खुदावंद यीशु मसीह की आमदे सानी के ताल्लुक से। और पहला साइन ये था कि इसराइल की अपने लैंड में वापसी, जहां पे वो लोग नेशन लेस थे दो सदियों से, बल्कि दो मिलेनियम से, 2000 सालों से, जहां वो होमलेस थे, नेशन लेस थे, खुदा ने उनको फिर से नेशन भी बना दिया और उनको लैंड भी दे दी। और 1948 में हमने इसका आगाज देखा। दूसरा पॉइंट जो हमने लास्ट टाइम स्टडी किया वो ये था कि यरूशलेम फिर यहूदियों के हाथ में वापस आ जाएगा। ये नबूवतें थीं और इनकी तकमील हमने 67 की वॉर के बाद होते हुए देखी। जब हम मुखालफे मसीह की तरफ बढ़ते हैं और उसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि वो हैवान कौन है और उसका अदद क्या होगा, तो इन चीजों को हमने अपने जहन में रखना है कि जो भी होगा वो ये नहीं कहेगा मैं मुखालफे मसीह हूं। कोई ही विल बी अ पर्सन ऑफ इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस उसके साथ होगा, रिलीजियस इन्फ्लुएंस उसके साथ होगा। हमने जो बिब्लिकल नॉलेज हमारे पास है उसको अप्लाई करते हुए अंडरस्टैंड करना है कि ये मुखालफे मसीह है। वो नहीं कहेगा मैं मुखालफे मसीह हूं। और उसका एक जो काम हम होते हुए देखेंगे वो ये है कि वो इसराइल के साथ एक अमन का मुआहदा करवाएगा उसके मुखालफों के साथ, पीस ट्रीटी, जिसके सबब से उनको ये कंसेशन दी जाएगी कि वो टेंपल को बिल्डअप कर सके, हैकल को, तीसरी हैकल को बना सके। और इसराइल के लिए ये एक बड़ा चार्म है, ये एक बड़ी अट्रैक्शन है कि वो तीसरी टेंपल जो है दोबारा से तामीर कर सकें और उनकी इबादतों का जो सिलसिला है, जैसे डेविड और सोलोमन ने उसे कंटिन्यू किया, और सोलोमन ने खास तौर पर जब टेंपल बनाई गई तो वही जो इबादतों का सिलसिला है उसे कंटिन्यू किया जा सके। और इस वक्त टेंपल की सिचुएशन ये है कि वेरी रिसेंटली जो यहूदी उलमा हैं उन्होंने, जैसे माजी में सनहेड्रिन थी खुदावंद यीशु मसीह के दौर में, जैसे 70 बुजुर्गों की काउंसिल थी, एक बार फिर से ये काउंसिल बना दी गई है सनहेड्रिन। उसमें 70 एल्डर्स जो हैं इसराइल के वो सिलेक्ट कर लिए गए हैं जो उस काउंसिल में बैठेंगे, और उनका जो लीडर है वो अपॉइंट कर दिया गया है, सरदार काहिन जिसको ओल्ड टेस्टमेंट में कहते थे, वो उन्होंने मुकरर कर दिया है वो शख्स। और हैकल में पहनने वाले सारे जो ड्रेस थे वो बना लिए गए हैं, उनकी जो भी सर्मनी के जो लिबास थे, और उसका मटेरियल भी प्रिपेयर्ड है। सो पॉइंट ये है कि यहूदी भी डेस्परेट हैं कि उनकी एक इबादत की जगह हो, जो जैसे माजी में थी वैसे ही दोबारा से खुदावंद उनके लिए मुमकिन करे। सो आज हम कोशिश करेंगे तीसरे और चौथे पॉइंट को हम अंडरस्टैंड करें बिब्लिकल प्रोफेसीज के मुताबिक। हिस्केल 38 बाब और जो 39 बाब है, ये आखिरी जंग, हर मजदून की जंग के ताल्लुक से बाइबल का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आखिरी वॉर को हमने देखना है तो इन दो चैप्टर्स में हमें मिलती है, ये आपने याद रखना है, हिस्कियल 38-39। और अभी जब हम इसको पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि यहां पे बहुत सी कौमों का जिक्र किया गया है, और जब हम इनकी लिस्ट बनाते हैं तो तकरीबन 9 नेशंस का जो नाम है वो यहां पे मेंशन किया गया है कि ये 9 कौमें या लोगों के ग्रुप्स या उनके इत्तेहाद ऐसे होंगे जो लास्ट वॉर के लिए आएंगे। इस आखिरी जंग में जो मजदून की वादी में लड़ी जाएगी, 4 इंपॉर्टेंट इसके पार्टिसिपेंट्स होंगे, ये आपने याद रखना है। 1 इसराइल, 2 मुस्लिम नेशंस, 3 यूरोपियन नेशंस, 4 रोमन कैथोलिकिज्म। ये 4 इसके मेन पार्टिसिपेंट्स होंगे। और जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे हिस्कियल का और जब हम इसकी डिटेल में जाते हैं तो ये चीजें हमें वाजिया तौर पर नजर आती हैं। स्वयं पढ़ेंगे 1-6 आयात।
और खुदावंद का कलाम मुझ पर नासिल हुआ कि ए आदमजात, माजूज की तरफ जो माजूज की सरजमीन का है और रूश और मस्क और तूबल का फरमा रवा है, मतवज्जे हो और उसके खिलाफ नबुवत कर और कह, खुदावंद यूं, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि देख एजूज, रूश और मस्क और तूबल के फरमा रवा, मैं तेरा मुखालिफ हूं और मैं तुझे फिरा दूंगा और तेरे जबड़ों में आंकड़े डालकर तुझे और तेरे तमाम लश्कर और घोड़ों और सवारों को जो सब के सब मुसल्ला लश्कर हैं, जो फिरियां और सिपरे लिए हैं और सब के सब तेग जन है, खींच निकालूंगा और उनके साथ फारस और कूश और फूत जो सब के सब सिपर बरदार हैं और खुद पोश हैं, जुमर और उसका तमाम लश्कर और शिमाल की दूर इतराफ के अहले तजर्मा और उनका तमाम लश्कर, यानी बहुत से लोग जो तेरे साथ हैं।
सो अभी हम यहां पे एक बहुत सी नेशंस के बारे में पढ़ते हैं और एक बड़ी ग्रुपिंग को देखते हैं जिनके तालुक से खुदा फरमाता है कि ये तेरे साथ आएंगे। कब आएंगे? 8वीं आयत।
और बहुत दिनों के बाद तू याद किया जाएगा और आखिरी बरसों में उस सरजमीन पर जो तलवार के गलबा से छुड़ाई गई है और जिसके लोग बहुत सी कौमों के दरमियान से फ्राहम किए गए हैं, इसराइल के पहाड़ों पर जो कदीम से वीरान थे चढ़ाएगा, लेकिन वो तमाम अकवाम से आजाद है और वो सब के सब अमनो अमान से सुकूनत करेंगे।
सो ये कब होगा? ये सारी जमायतें या ग्रुप्स कब जमा होंगी? आखिरी बरसों में। आखिरी वर्ष में नहीं बल्कि आखिरी बरसों में। सो इट विल टेक सम टाइम सम ईयर्स कि ये नेशन एक जो है वो ग्रुपिंग में चली जाएंगे। आगे हम चलेंगे 13वीं आयत।
सबा, दादन और तरसीस के सौदागर और उनके तमाम जवान शेर बबर तुझसे पूछेंगे, क्या तू गारत करने आया है? क्या तू अपना गौल इसलिए जमा किया है कि माल छीन ले और चांदी सोना लूटे और मवेशी और माल ले जाए और बड़ी गनीमत हासिल करे?
14वीं आयत।
इसलिए ऐ आदमजात, नबुवत कर और जूद से कह, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि जब मेरी उम्मत इसराइल अमन से बसेगी, क्या तुझे खबर ना होगी? और तू अपनी जगह से शिमाल की दूर इतराफ से आएगा, तू और बहुत से लोग तेरे साथ जो सब के सब घोड़ों पर सवार होंगे।
और आखिर में हम 16वीं आयत पढ़ेंगे।
एक बड़ी फौज और भारी लश्कर, तू मेरी उम्मत इसराइल के मुकाबले को निकलेगा और जमीन को बादल की तरह छिपा लेगा। ये आखिरी दिनों में होगा اور میں تجھے اپنی سرزمین پر چڑھا لاؤں گا تاکہ قومیں تجھے مجھے جانے جس وقت میں ایجوج ان کی آنکھوں کے سامنے تجھ سے اپنی تقدیس کراؤں گا.
اور یہ آخری زمانے میں ہوگا. اور آپ کوشش کریں آپ دونوں چیپٹرز کو تھورلی اسٹڈی کریں. اور اگر ہم 19ویں آیت دیکھیں تو جب یہ فوجیں جو ہیں جمع ہوں گی, یہ سارے نام جو یہاں پہ بتائے گئے اس وادی میں جمع ہوں گے, اور خداوند یہاں پہ مداخلت کریں گے اس وار کے لیے, اور اس کا امپیکٹ دیکھیں 19ویں آیت.
کیونکہ میں نے اپنی غیرت اور آتش قہر میں فرمایا کہ یقیناً اس روز اسرائیل کی سرزمین میں سخت زلزلہ آئے گا.
سو ایک ٹیربل ارتھ کویک, جب یہ فوجیں موو کریں گی جمع ہوں گی وار کے لیے تو کیا ہوگا, سخت زلزلہ آئے گا. جیسے سونامی کا امپیکٹ ہوا اور زلزلہ. 20ویں آیت دیکھیں کہ
یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں اور آسمان کے پرندے اور میدان کے چرندے اور سب کیڑے مکوڑے جو زمین پر رینگتے پھرتے ہیں اور تمام انسان جو روئے زمین پر ہیں میرے حضور تھر تھرائیں گے, اور پہاڑ گر پڑیں گے اور کراڑے بیٹھ جائیں گے اور ہر ایک دیوار زمین پر گر پڑے گی.
سو اے پاورفل ارتھ کویک. اس وار کے ساتھ ساتھ جو ایک چیز ہم دیکھیں گے کہ ایک زبردست زلزلہ آئے گا, سمندر ہل جائے گا, جو اوپر برڈز ہیں پرندے ہیں ان کا کیا حال ہوگا, اور پوری دنیا اس زلزلے کے امپیکٹ کو حاصل کرے گی. سو یہ اس سارے وار کا آخری جنگ کا نقشہ جو ہم دیکھتے ہیں. لیکن آج جو ہم پوائنٹ سٹڈی کریں گے وہ یہ ہے کہ یہ کون سے ملک ہیں جن کے نام یہاں پر بتائے گئے جو اس وار کے لیے وہ جمع ہو رہے ہیں تاکہ آگے بڑھیں, اور اس سے ہم یہ بھی انڈرسٹینڈ کریں گے کہ جو اینڈ ٹائم سینیریو ہے ہم اس میں کہاں تک پہنچ چکے ہیں. سو ہمارا تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ایک اتحاد ہوگا مسلم نیشنز میں اور رشین نیشنز میں, اسلامک ورلڈ اور کمیونسٹ ورلڈ ایک کولیشن میں جائیں گے. یہ تیسرا پوائنٹ ہے, اسلامک نیشنز مسلم نیشنز اور رشین جو کمیونسٹ نیشنز ہیں. یہ ابھی جو کچھ آپ نے پڑھا ہے اسکیل 38 میں ہمیں اس کی جو تصویر ہے اس میں نظر آتی ہے. یہ دو بڑی نیشنز یا بڑے گروپس جو ہیں آپس میں مرج ہوں گے, ملیں گے ایک پرپس کے لیے. بظاہر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ دس از ناٹ پاسبل, مسلم آئیڈیالوجی اور ہے بڑی ڈفرنٹ ہے, اسلامک جو کمیونسٹ آئیڈیالوجی ہے, ایتھیسٹ جو فینومنا ہے یہ ایجنڈا ہے وہ بالکل ڈفرنٹ ہے, وہ ایک گاڈلیس سوسائٹی ہے. سو کمیونزم ان اٹ سیلف از اے ریلیجن, کہ ان کا ریلیجن کیا ہے, دیر از نو گاڈ, گاڈ ڈزنٹ ایگزسٹ. سو تیسرا جو سیکنڈ کمنگ کا ہم پروفیٹک سائن دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان دو بڑے گروپس میں یا نیشنز میں ایک اتحاد, کمپرومائز, ایک کولیشن ہم دیکھتے ہیں, اور اس میں جس پوائنٹ پہ ان کا اتحاد ہوگا یا ہو رہا ہے اٹ ول بی کمرشل اینڈ ملٹری. کیسا اتحاد ہوگا آپس میں, فوجی ایک دوسرے کی مدد اور کمرشل اکنامک بزنس امپورٹ ایکسپورٹ. سو ہسکیل 38:11 جب ہم پڑھتے ہیں اور زبور 83 تو ہم ان نیشنز کو اسرائیل کے اگینسٹ وار کرتے ہوئے اور جمع ہوتے ہوئے وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں. یہ جو پچھلی غزہ کی وار ہوئی ہے اس کے بعد سے جو اسرائیل کا جو تعلقات ہیں ٹرکی کے ساتھ وہ اب اتنے اچھے نہیں ہیں, اور ایک طرف ٹرکی یہ چاہتا ہے کہ وہ جو یورپین کمیونٹی ہے اس کا ممبر بنے, اس کے سامنے ایک یہ چوائس ہے کہ وہ ای یو میں چلا جائے, या उसके सामने दूसरी चॉइस ये है कि वो ऑटोमन एम्पायर को, एक इस्लामिक एम्पायर को जो है वो फिर से रीबिल्ड करे। तो टर्की इस ऑप्शन को ज्यादा ले रहा है कि वो यूरोप को छोड़ दे, वो ईयू को छोड़ दे और वो किस तरफ जाए, अपनी एक जो ऑटोमन एम्पायर है उसको वो बिल्ड अप कर सके। सो एक तरफ ये जो पार्स हैं ये स्ट्रॉन्गर हो रही हैं अपने मुफाद के लिए, मिलिट्री पर्पस के लिए और कमर्शियल पर्पस के लिए, और दूसरी तरफ इसराइल की जो सपोर्ट है अमेरिका की तरफ से वो डेली कम होती चली जा रही है, और जो मौजूदा हुकूमत है ओबामा की ये उसको बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे उस इमदाद को या उनकी सपोर्ट को ले आई है। और उनके अपने रीजंस हैं, रिसेशन जो है वो बढ़ता जा रहा है और डॉलर जो है वो डिक्लाइन पे है, और अमेरिका के अपने जो बहुत से वसाइल हैं वो अफगानिस्तान में और इराक में वो डिप्लीट हो रहे हैं। नंबर फोर, अमेरिका को अपने जो टेररिस्ट थ्रेट्स हैं उनका बहुत ज्यादा उसको प्रॉब्लम है, ये वो फेस कर रहा है और इसमें बहुत सा जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो सारा जो सीन है वो ये बन रहा है कि अमेरिका जो इसराइल का बेहतरीन सपोर्टर है वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट रहा है। एंड ऑन द अदर हैंड मुस्लिम नेशंस और कम्युनिस्ट नेशंस आपस के कोलेशन में वो स्ट्रांग हो रहे हैं और वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसराइल के पास अब जो ऑप्शन रह जाती है आने वाले दिनों में वो ये है कि वो पीस की तरफ जाए। जब इंसान फाइट नहीं कर सकता है तो वो किस ऑप्शन की तरफ जाता है, वो सुलह की ऑप्शन की तरफ जाता है। और इसराइल जहां पे बहुत सी पीस की शरायत को के सामने वो झुक सकता है या मान सकता है, उसमें एक जो मेन एलिमेंट हो सकता है या होगा वो ये है कि हमें ये परमिशन दे दी जाए कि हम ज्यूइश टेम्पल बना लें, हम अपनी हैकल जो है वो दोबारा से तामीर कर लें। तो जब आप इन चीजों को स्ट्रांग होते हुए देखें, इसराइल की सपोर्ट कम हो रही है, उसकी जो बैकअप है, और ये नेशंस आगे की तरफ बढ़ रहे हैं प्रेशराइज, और नंबर तीन चीज जो आपको नजर आने शुरू हो जाए और वो है टेंपल की तैयारी, तो समझ लें कि वो शख्स जो एंटी क्राइस्ट है वो ऑलरेडी सीन पर आ चुका है। टेंपल और पीस, पीस ट्रीटी और टेंपल रीबिल्डिंग, जब आप खबरों में ये बातें सुने हैकल बनाई जाने वाली परमिशन मिल गई, ये हो रहा है पीस की बात, आप समझ लें कोई इंटरनेशनल लीडर जो इस वक्त मौजूद है सीन के ऊपर, वन ऑफ देम इज एंटी क्राइस्ट। और जैसे जैसे वक्त गुजरेगा और बाइबल जो प्रोफेसीज हैं या जो बाइबल की टीचिंग्स हमारे पास है, हम उससे और ज्यादा वाजिया तौर पर देख सकेंगे कि वो कौन सा शख्स है। लेकिन जब हम फर्दर स्टडी करेंगे हैवान को और उसके अदद को, तो हम मजीद इन बातों के ताल्लुक से हम देख सकेंगे। हम पढ़ेंगे डैनियल 9 बाब और उसकी 26वीं आयत।
और 62 हफ्तों के बाद वो ममसू कत्ल किया जाएगा और उसका कुछ ना रहेगा, और एक बादशाह आएगा जिसके लोग शहर और मकदस को मिसमार करेंगे, और उसका अंजाम गोया तूफान के साथ होगा और आखिर तक लड़ाई रहेगी, बर्बादी मुकरर हो चुकी है। 26, 9, 26।
हाँ जी, एक और हवाला जो हम पढ़ेंगे वो मुकाशवा चैप्टर 17 और 9वीं और 10वीं आयत।
यही मौका है उस जहन का जिसमें हिकमत है, वो सातों सर सात पहाड़ हैं जिन पर वो औरत बैठी हुई है, और वो सात बादशाह भी हैं, 5 तो हो चुके हैं और एक मौजूद है, और एक अभी आएगा, आया है नहीं, और जब आएगा تو کچھ عرصہ تک اس کا رہنا ضرور ہے.
ہاں جی چلیں ہم یہیں سے دیکھتے ہیں. جو پوائنٹ ہم سٹیڈی کر رہے ہیں وہ یہ ہے, تیسرا پوائنٹ سیکنڈ کمنگ کے تعلق سے, ایک مسلم اور کمیونسٹ اتحاد ہوگا اور یہ نیشنز آگے بڑھیں گی آرمگیڈن کی وار کے لیے. چوتھا جو ابھی ہم تھوڑا سا جو ان میں نام بتائیں گے ان کو بھی سٹڈی کریں گے, ان کی بیک گراؤنڈ کو دیکھیں گے, یہ کن ملکوں کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے. لیکن ابھی جو ہم نے دو حوالے پڑھے ڈینیل کا اور مکاشفی کتاب کا, یہ ہمارا چوتھا پوائنٹ ہے سیکنڈ کمنگ کے تعلق سے کہ جو قدیم رومن امپائر تھی ایک وقت میں اور خاص طور پر کرائسٹ کے زمانے میں جو رومی حکومت تھی وہ دوبارہ سے ایز اے پولیٹیکل پاور ری ایمرج کرے گی. رومن جو کنگڈم تھی یہ امپائر تھی, یہ ایک ایسی کنگڈم تھی جس کو کسی نے فتح نہیں کیا, وہ خود بخود اندر ہی اندر سے وہ ڈس انٹیگریٹ ہو گئی. اور ڈینیل نے جب ویژن دیکھی اس سٹیچو کی جس کا سر کائے کا تھا گولڈ کا, ایک مورت دیکھی اس نے یاد ہے آپ کو, سر کس کا تھا سونے کا اور اس کا جو بازو اور سینہ تھا چاندی اور اس کی جو تھائز تھی پیتل برونز اور اس کی جو لیگز تھی آئرن, ٹانگیں لوہے کی اور جو تھائز اور پاؤں تھے آئرن اور کلے, مٹی اور لوہے کا مکسچر تھا. حالانکہ یہ دو چیزیں آپس میں مل نہیں سکتی ہیں, آئرن اور کلے, مٹی اور لوہا آپس میں ملتا نہیں ہے, لیکن یہی وہ کولیشن ہے, یہی وہ اتحاد ہے مسلم نیشنز کا کمیونسٹ نیشنز کا. The feet of iron and clay. سو ابھی جو ہم نے حوالہ پڑھا اس کو ہم دوبارہ پڑھیں گے اور دیکھیں کہ یہاں پہ جان جو ہمیں کیا بتا رہا ہے 17 مکاشفہ 17 باب.
اور یہی موقع ہے اس ذہن کا جس میں حکمت ہے, وہ ساتوں سر سات پہاڑ ہیں.
ہاں جی ساتوں سر سات پہاڑ, اس سے پیچھے جب دیکھیں گے ایک عورت ہے وہ سات پہاڑوں پر بیٹھی ہوئی. تو آپ سب جو ہسٹری پڑھنے والے لوگ ہیں آپ جانتے ہیں کہ روم از کالڈ دا سٹی آف 7 ہلز, روم کا نام ہی یہ ہے سات پہاڑوں والا شہر. اور عورت بائبل میں چرچ کو پیش کرتی ہے, دا چرچ سٹنگ آن دا 7 ہلز. تو سات پہاڑ کون سے ہیں؟ روم. عورت کس کو پیش کر رہی ہے؟ چرچ کو. تو یہاں پہ ہمیں کیا نظر آ رہا ہے؟ دا چرچ آف روم. ہاں جی آپ پڑھیں.
جن پر وہ عورت بیٹھی ہوئی ہے اور وہ سات بادشاہ بھی ہیں.
وہ سات پہاڑ بھی ہیں اور سات بادشاہ بھی. اس کا مطلب ہے روم جس جگہ پہ ہے یعنی یورپ میں ہے اس کے ساتھ سات بادشاہ اور ملیں گے یہ کام کرنے کے لیے. 7 کنگز, کنگڈمز, نیشنز. آج کل ہم کنگز کی شکل میں نہیں دیکھتے ہیں, حکومتوں کے یا پرائم منسٹرز کی شکل میں دیکھتے ہیں. ہاں جی
پانچ تو ہو چکے ہیں,
پانچ ان میں سے بادشاہ جو ہیں وہ ہو چکے ہیں
اور ایک موجود ہے اور ایک ابھی آیا نہیں.
پانچ ہو چکے ہیں, ایک موجود ہے یعنی چھٹا,
اور ایک ابھی آیا نہیں اور جب آئے گا تو کچھ عرصہ تک اس کا رہنا ضرور ہے.
ہاں جی یہ کون سے پانچ بادشاہ ہیں یا پانچ؟ جان سنگھ 5 have fallen and the other has not yet come but when he does come he must remain for a little while. پانچ ہو چکے ہیں اور انگلش کی بائبل میں پانچ گر چکے ہیں. تو وہ کون سی پانچ نیشنز ہیں جو روم سے پہلے آ چکی ہیں, ہو چکی تھیں؟ نمبر 1 ایجپٹ مصر, نمبر 2 اسیریا, نمبر 3 بابل, نمبر 4 پرشیا, نمبر 5 گریس. दोबारा पढ़ें जरा इसको, ताकि आप ये नोट कर लें, ये फाइव नेशंस हैं जिनका बाइबल में आपको जिक्र मिलता है, जिन्होंने दुनिया पर खुदावंद यीशु मसीह के दौर में और उससे पहले हुकूमत की। मिस्र, असीरिया, बाबल, पर्शिया, ग्रीक, यूनान। हाँ जी,
वो सातों शहर सात पहाड़ हैं जिन पर वो औरत बैठी हुई है, और वो सात बादशाह भी हैं। पांच तो हो चुके हैं,
पांच हो चुके हैं
और एक मौजूद है,
एक मौजूद है। और कौन मौजूद था उस वक्त? रोम।
और
यूहन्ना के जमाने में कौन था? रोम। एक मौजूद है
और एक अभी आया नहीं, और जब आएगा तो कुछ अरसा तक उसका रहना जरूर है। तो
एक अभी आया नहीं, वो आएगा और कुछ अरसे तक रहेगा, और ये कौन है? मुखालफे में से। तो रोम में से क्या निकलना है? मुखालफे में से। फाइव नेशंस हैव फॉलन, अभी एक मौजूद है और एक अभी आया नहीं, और उसके बारे में यह नहीं बताया गया कि वो कहां से आएगा। इसका मतलब है जो है वो उसी में से आएगा, और जब वो आएगा तो वो थोड़े अरसे के लिए, 7 years जो बाइबल में बताती है, थोड़े अरसे के लिए वो क्या करेगा? हुक्मरानी करेगा। सो अगर हम पीछे जाएं डैनियल में, डैनियल 2:36-45 आयत,
वो ख्वाब ये है और उसकी ताबीर बादशाह के हजूर बयान करता हूं। ए बादशाह, तू शहंशाह है जिसको आसमान के खुदा ने बादशाहियों तवानाई और कुदरतो शौकत बख्शी है, और जहां कहीं बनी आदम सुकूनत करते हैं उसने मैदान के चरिंदे और हवा के परिंदे तेरे हवाले करके तुझको उन सब का हाकिम बनाया है। वो सोने का सर तू ही है।
उस मूर्ति में जो सोने का सर है, डैनियल इज सेइंग जो बाबल का बादशाह है कि ये तू है। द हेड इज द किंग ऑफ बेबलॉन नबूकदनेस्सर। अ पॉइंट ही है जो आपने अंडरस्टैंड करना है, वो ये याद रखना है, वो ये है, जब डैनियल इस विजन को देख रहे हैं तो वो तीसरी किंगडम में है, दो उससे पहले गिर चुकी हैं, मिस्र और असीरिया। डैनियल किस दौर में थे? बाबल के दौर में थे। डैनियल कब असीरी में गए? बाबल की असीरी में गए, 70 साल की। तो जब वो ये विजन देख रहे हैं, उन्होंने मूर्ति देखी है, तो दो कौमें उस वक्त उससे पहले जा चुकी हैं, और उन्होंने बाकी कितनी कौमें देखी हैं? 4 कौमें देखी हैं। टोटल मिलके कितनी हो जाती हैं? 6 हो जाती हैं। मुकाशवे भी हम यही देखते हैं, 5 गिर चुकी, क्योंकि जॉन से पहले 5 हो चुकी, 6 मौजूद है। वहां भी हम 6 देख रहे हैं, हम यहां पर भी 6 देख रहे हैं, लेकिन डैनियल ने पहली 2 का जिक्र नहीं किया क्योंकि वो जा चुकी हैं, वो सर से शुरू कर रहे हैं। हां जी,
और तेरे बाद एक और सल्तनत बरपा होगी जो तुझसे छोटी होगी, और उसके बाद एक और सल्तनत तांबे की जो तमाम जमीन पर हुकूमत करेगी, और चौथी सल्तनत लोहे की मानिंद मजबूत होगी, और जिस तरह लोहा तोड़ डालता है और सब चीजों पर गालिब आता है, हां जिस तरह लोहा सब चीजों को टुकड़े टुकड़े करता और कुचलता है, उसी तरह वो टुकड़े टुकड़े करेगी और कुचल डालेगी। और जो तूने देखा कि उसके पांव और उंगलियां कुछ तो कुम्हार की मिट्टी की और कुछ लोहे की थीं, सो उस सल्तनत में तिफरका होगा। मगर जैसा कि तूने देखा कि उसमें लोहा इससे मिला हुआ था, उसमें लोहे की मजबूती होगी, और चूंकि पांव की उंगलियां कुछ लोहे की और कुछ मिट्टी की थीं, इसलिए सल्तनत कुछ कवी और कुछ जईफ होगी। और जैसा तूने देखा कि लोहा मिट्टी से मिला हुआ था, वो बनी आदम से अमेखता होंगे, लेकिन जैसे लोहा मिट्टी से मेल नहीं खाता, वैसे ही वो भी बहम मेल ना खाएंगे। और उन बादशाहों के अयाम में आसमान का खुदा एक सल्तनत बरपा करेगा जो ताअबद नेस्त ना होगी, और उसकी हुकूमत किसी दूसरी कौम के हवाले ना की जाएगी, बल्कि वो उन तमाम ममलिकतों को टुकड़े टुकड़े और नेस्त करेगी, और वही अब तक कायम रहेगी।
सो डैनियल की जो इंटरप्रिटेशन है इस विजन की, हमें ये बताती है कि इस दौर में जो लोहे और मिट्टी के मिक्सचर का दौर है, खुदावंद एक और किंगडम को कायम करेगा जो अब तक कायम रहेगी। और ये कौन सी किंगडम होगी? खुदा की बादशाहत। कैसे कायम होगी? जब खुदावंद यीशु मसीह दोबारा अपनी कलीसिया को लेने के लिए आएंगे और कौमों की अदालत के लिए आएंगे, तो ये किंगडम फॉर एवर, फॉर इटर्निटी जो है वो एस्टेब्लिश कर दी जाएगी। तो ये जो सोने का सर है, ये बाबल की हुकूमत को पेश करता है, और जो चेस्ट और आर्म्स हैं सिल्वर की, ये पर्शिया की हुकूमत है जो इसके बाद आएगी, फारस की हुकूमत है। उसके बाद ग्रीस की हुकूमत को देखते हैं जो बैली और थाइज हैं ब्रॉन्ज की, पीतल के, उसका पेट और उसकी टांगे हैं ब्रॉन्ज ग्रीस की। यूनान ने जो दुनिया को सबसे बड़ा गिफ्ट दिया वो क्या था? लैंग्वेज, यूनान की जुबान। और इस जुबान ने अपने दौर में बाइबल की बहुत ज्यादा मदद की कि ग्रीक में जब न्यू टेस्टामेंट लिखा गया तो वो पूरी दुनिया में स्प्रेड हो सके। और यूनान के बाद जो हुकूमत आई जो लोहे की थी वो कौन सी थी? रोम। और रोम ने जो दुनिया को सबसे बड़ा गिफ्ट दिया वो क्या था? नंबर वन लॉ, रोमन लॉ, और नंबर दो सड़कें। ये अभी भी जो हमारी सिल्क रोड है, शाहराए रेशम, ये बेसिकली वही ओरिजिनल सड़क थी जो रोमन्स ने, और वो व्हाइट मार्बल की सड़कें बनाते थे, और उनकी बनाई हुई कई सड़कें अभी तक मौजूद हैं दुनिया में। और वो इतनी चौड़ी बनाते थे कि दो घोड़े उस पर एक वक्त में चल सकें। उनकी हर सड़क जो उन्होंने बनाई है वो व्हाइट मार्बल की थी ताकि उसकी विजिबिलिटी ज्यादा हो। सो ये वो गिफ्ट है जो उन्होंने दुनिया को दिया ताकि उन सड़कों के थ्रू जो अंजील का पैगाम है वो पूरी दुनिया में, उस वक्त की दुनिया में जा सके। हमारा जो कंसर्न है वो आखिरी चीज है, लोहे के और मिट्टी का जो मिक्सचर है उसमें मजबूती भी है, उसमें कमजोरी भी है। जब हम इसको इस पस मंजर में देखते हैं, यूरोप के और रोम के और इस रोमन एम्पायर के, तो दो टांगे दो चीजों को पेश करती हैं, ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न यूरोप, दो हिस्से किंगडम के, दो हिस्से मशरकी और मगरबी हिस्सा। वेस्टर्न यूरोप कम्युनिस्ट और क्रिश्चियन नेशंस हैं, और ईस्टर्न यूरोप मोस्टली क्या है? कैथलिक और इस्लामिक है, मुस्लिम है। दो उसके जो टांगे हैं इन इन दो चीजों को पेश करते हैं, और उसमें मिक्सचर है आयरन और क्ले का, यानी मजबूती भी है और कमजोरी भी है। तो इनका जो इतिहाद है ये मजबूत भी है और कमजोर भी है, किसी वक्त भी टूट सकता है। इसीलिए एन जब एंटी क्राइस्ट का मिडिल पीरियड होगा तो ये इतिहाद टूट जाएगा, हर कोई अपने फायदे के लिए आगे बढ़ेगा, पीस ट्रीटी कैंसिल हो जाएगी, और दुनिया उस दौर में से गुजरेगी जिसको यह नाम दिया गया है ग्रेट ट्रिबुलेशन, मुसीबतों, शदीद मुसीबतों का दौर। चर्च अभी भी पर्सिक्यूशन में से गुजर है, असारसानी में से गुजर है, ट्रिबुलेशन में से भी गुजर है, लेकिन यह जो दौर होगा इसको बाइबल कहती है इट विल बी अ पीरियड ऑफ ग्रेट ट्रिबुलेशन, जब हर जो किंगडम है वो अपने अपने फायदे के लिए वो काम करेगी। सो ये जो इतिहाद है क्ले और आयरन का, ये वीक भी है लेकिन अपने फायदे के लिए वो स्ट्रांग भी है। और इसमें इसकी वीकनेस एक और जो है वो ये है, एक तो अकायद की वीकनेस है, उनका अपना कीदा, उनका अपना कीदा है। नंबर दो कल्चर का डिफरेंस है, एक ईस्टर्न कल्चर है, इस्लामिक कल्चर है, दूसरा वेस्टर्न कल्चर है, उस कल्चर के स्वभाव से भी इनका जो इकट्ठे चलना है वो डिफिकल्ट है। लेकिन ये इस कदर ये फिनोमेना जो है ये बढ़ रहा है, और ईस्टर्न यूरोप इस कदर मुस्लिम इंफ्लुएंस के नीचे है कि इस वक्त जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने इस फिनोमेना को जिसमें ईस्टर्न यूरोप जो है वो वेस्टर्न यूरोप में दाखिल हो रहा है, उनके साथ मर्ज हो रहा है और एक इतिहाद पैदा हो रहा है, एक नया नाम दिया है जिसका नाम है यूरेबिया, एक नई टर्म, पता नहीं आपने भी सुनी है या नहीं सुनी, आप सुनेंगे, यूरेबिया जो है एक नई टर्म डेवलप की जा रही है इस इतिहाद के ताल्लुक से, यानी यूरोप और अरेबिया का आपस में इतिहाद। और जब आप यूरेबिया का वर्ड सुनेंगे न्यूज में, खबरों में और यूएनओ के रेजोल्यूशंस में, तो आप समझ लें जब यूरेबिया बिल्डअप हो रहा है, यूरोप का और अरेबिया का इतिहाद हो रहा है अपने मकासद के लिए, मिलिट्री पर्पस के लिए और कमर्शियल रीजंस के लिए, तो इसका मतलब है हम उस दरवाजे पे, अब दुनिया के हालात उस दरवाजे पे खड़े हैं जहां पे किसी भी मोमेंट पे जो एंटी क्राइस्ट है, मुखालफ मसीह है, वो जाहिर हो सकता है, यूरेबिया। सो आखिर में हम एक बार फिर से हिस्केल 38 की तरफ जाएंगे और जो नेशंस के नाम हमने पढ़े उनका एक ब्रीफली एक लिस्ट देखना चाहेंगे कि इन नॉन नेशंस का जो जिक्र किया गया ये कौन कौन सी काम में है। लेकिन उससे पहले दो बातें जो रिसेंटली वकूह में आई हैं। नंबर वन, जो कैथोलिकिज्म है, ये कैथोलिसिज्म है, उसने अपने आप को फिर से स्ट्रॉन्ग किया है और ये जो पोप बेनेडिक्ट 16 है उन्होंने अपनी एक तकरीर में ये कहा है जो हिस्टोरिकल कैथोलिक डॉक्ट्राइन है निजात की, वो ये है कि जब तक कैथोलिक प्रीस्ट कैथोलिक चर्च में आपको इशाए रुबानी नहीं देता है आप निजात नहीं पा सकते, आप आसमान की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकते। इस पोप बेनेडिक्ट 16 ने यह बात फिर से वाजिया कर दी है कि हम अपनी जो ऑर्थोडॉक्स टीचिंग है हमारी जो शुरू से चली आ रही है, हम उस पर वापस आज एक बार फिर से खड़े हो जाते हैं और उन्हें डिक्लेयर किया है क्रिश्चियन वर्ल्ड के लिए, हमारी जो डॉक्ट्राइन है कैथोलिक वो ये है कि जब तक कैथोलिक प्रीस्ट कैथोलिक चर्च में पाक इशारा नहीं आपको देता है आप खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकते। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं अब टीचिंग का निजात के ताल्लुक से जो प्रोटेस्टेंट चर्च में है और जो कैथोलिक चर्च में है। लेकिन कैथोलिक ने एक बार फिर से अनाउंस कर दिया है इस टीचिंग में हम अब कोई लचक नहीं लाना चाहते हैं, हमारा स्टांस ये है और हम इसी पॉइंट पे खड़े रहेंगे। दूसरी साइड पे जो डेवलपमेंट हो रही है वो जुडाइज्म में हो रही है और वो अपनी तीसरी हैकल को बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है और उन्होंने अपना, जैसे मैंने आपको पहले बताया, सैनहेड्रिन बना ली है, 70 की काउंसिल बना ली है और जिस शख्स को उसका सरदार काहिन बनाया गया है वो है रैबाई शामीन रिचमैन, उसका नाम है, एंड ही इज वेल प्रिपेयर्ड कि अपनी जिम्मेदारियां, जब भी हैकल बने तो मैं अपनी जो जिम्मेदारियां हैं वो टेक ओवर कर लूं, रैबाई शामीन रिचमैन। और उसके साथ जो 70 की काउंसिल है इसराइल की वो बिल्कुल बना दी गई है। सो आई एम उन नेशंस के बारे में पढ़ें, हिस्केल 38, हाँ जी पहली आयत, और मैं ब्रीफली आपको इनके बारे में बता सकूंगा।
और खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ए आदमजाद जूज की तरफ जो माजूज की सरजमीन का है।
सो नंबर वन, क्या नाम है? जूज। नाउ जूज कौन है? हु इज गॉग? और जब हम आपको नोट्स देंगे तो इसमें ये पूरा ये रिसर्च पेपर आपको मिलेगा कि इन चीजों की बैकग्राउंड क्या, ये क्या लोग हैं। सो जो रीसेंट स्टडीज हैं, रिसर्च की गई गॉग के ऊपर, जूज के ऊपर, तो इस एक जो कन्विंसिंग स्कूल ऑफ थॉट है वो इस पॉइंट पे पहुंचा है कि जूज जो है یہ کسی ملک کا یا انسان کا نام نہیں ہے, اور اس کا ٹریس کہیں بھی ہمیں ہسٹری میں نہیں ملتا ہے, یہ ملک تھا, یہ ملک تھا, یہ فلاں, اس کا نام جوج تھا, یہ ٹریس نہیں ملا. جو ایک نیا کنونسنگ اسکول آف تھاٹ ہے, تو بائبل اسکالرز جوج کو اب اس اینگل سے دیکھ رہے ہیں کہ مے بی جوج از ناٹ اے کنگ اینڈ اٹس ناٹ اے کنگڈم اینڈ اٹس ناٹ اے سٹی. جوج ایک سپر نیچرل بینگ ہے, ایک اسپرٹ ہے, کسی فرشتے کا نام ہے. جیسے بائبل اسکالرز یہ کہہ رہے ہیں, جیسے خدا کے پاس میکائل کے لیول کا ایک فرشتہ ہے جو خدا کے لیے کام کرتا ہے, اور اسرائیل کا کیا ہے, گارڈین اینجل ہے, ویسے ہی ابلیس کے پاس ایک فرشتہ ہے اس لیول کا جس کا نام کیا ہے, جوج. اور اس پہ مزید کام ہو رہا ہے اور ریسرچ ہو رہی ہے, لیکن اس وقت جو اس کو پوزیشن دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ گوگ از اے نان ہیومن کریکٹر. اس کا جو ٹریس ہے وہ ہسٹری میں, آرکیالوجی میں کہیں بھی نہیں ملتا ہے. اور یہاں پہ اگر آپ پڑھیں آیا آدمزاد جوج کی طرف, جو مجوج کی سرزمین کا ہے, اب یہ نہیں بتایا کہ وہاں کا بادشاہ ہے, کہ وہاں کا بندہ ہے, کہ وہاں کا ڈیمن ہے, کہ وہاں کا موکل ہے, صرف کیا بتایا گیا, جو مجوج میں اس کے ساتھ کوئی اس کا لنک ہے. تو سیکنڈ نام کیا ہے, مجوج, میگوگ. ایک سو تیس کے قریب ہسٹوریکل ریفرنس ملتے ہیں ہسٹری میں کہ یہ جو میگوگ ہے, مجوج ہے, یہ کون ہے, کہاں کا رہنے والا ہے. بائبل میں جب ہم جائیں تو مجوج کون تھا, یافت کا بیٹا. بائبل ٹیلز اس مجوج کون ہے, جیفت. نو کے کتنے بیٹے تھے, کیا نام, یافت. یہ مجوج کون ہے, یہ یافت کا بیٹا ہے, جیفت کا بیٹا ہے, اور جس نے سینٹرل ایشیا میں جا کے سکونت اختیار کی, اور جو دیوار چین بنائی گئی تو اس کا جو پرانا نام ہے وہ یہ ہے, دیوار چین تو آپ ہم اسے کہتے ہیں, لیکن جو اس کا پرانا نام تھا وہ یہ تھا کہ یہ دیوار اس لیے بنائی گئی کہ مجوج سے, ٹو پروٹیکٹ آور سیلز فرام میگوگ. میگوگ کون لوگ تھے, سینٹرل ایشیا کے لوگ تھے جن سے چائنا ڈرتا تھا کہ ہم پہ حملہ نہ کر دیں, ان کے ڈیفنس میں انہوں نے وہ دیوار بنائی. اس دیوار کا پرانا نام کیا تھا کہ ریمپارٹس آف میگوگ, یہ اس کا ایگزیکٹ نیم ہے چائنا وال کا. سو سینٹرل ایشیا کے یہ لوگ ہیں میگوگ, جہاں پہ جو یافت کا بیٹا تھا سیٹل ہوا, اور آج کے ٹائم فریم میں ہم اسے کہہ سکتے ہیں یہ رشین لوگ ہیں. مجوج کون ہے, رشین لوگ ہیں. ہاں جی, دوسری تیسری آیت, نہیں دوسری آیت.
اور روش اور مسک اور توبل کا فرما روا ہے, متوجہ ہو.
مسک اور توبل, یہ دو نام یہاں پہ یوز ہوئے, مسک اور توبل. اب آپ اگر بائبل میں جائیں, ہسٹری میں جائیں, تو یہ دو کون تھے, یہ دو بھائی تھے, مسک اور توبل, یہ دونوں بھائی تھے. اور یہ کس کے بھائی تھے, یہ مجوج کے بھائی تھے. اس کا مطلب ہے یہ تینوں کون تھے, یہ یافت کے بیٹے تھے. سو جیفت کے جو بیٹے ہیں, ایک مجوج ہے جو سینٹرل ایشیا میں جا کے بیٹھ گیا جس کو ہم رشیا کہتے ہیں, اور اس کے جو دو بھائی تھے مجوج کے, یا جیفت کے جو دو اور بیٹے تھے مسک اور توبل, وہ जिस जगह पे जाके सेटल डाउन हुए उसको आज हम प्रेजेंट डे टर्की कहते हैं। और यूसुफस ने अपनी किताब में इसका जिक्र किया है, ये तोबल और मशक का, कि ये एंशंट हेटाइट एम्पायर है, हत्तियों की सरजमीन है, जो आज के दौर में कहां पे है, ईस्टर्न टर्की में। तो जब हम आमदे इस सानी के ताल्लुक से, आखिरी जंग के ताल्लुक से नाम पढ़ रहे हैं, तो नंबर वन किसका नाम आ रहा है? जूज, गॉग। और गॉग कौन है? एक डीमन पर्सनैलिटी, सुपरनेचुरल बींग। मी गॉग कौन है? रशिया आज का। और मशक और तोबल टर्किश और उसके साथ के। और आज हम इसे क्या कह सकते हैं, जब हम रशिया की बात करते हैं तो ये कम्युनिस्ट है, जब हम मशक और तोबल की बात करते हैं तो ये मुस्लिम कल्चर है। हां जी आगे, नहीं आप पांचवी आयत पढ़ेंगे। हां जी,
और उनके साथ फारस और कूश और फूत, जो सब के सब सिपर परदार और खुद पोश हैं।
हाँ जी, उनके साथ तीन और नेशंस का नाम लिया गया, फारस और कूश और
फूत।
फारस, पर्शिया, और ये तो आज भी जानना इजी और सिंपल है, पर्शिया ईरान ही है, लेकिन इट्स नॉट ओनली ईरान। पर्शिया मींस मॉडर्न ईरान, अफगानिस्तान के हिस्से, कुछ पाकिस्तान के हिस्से, कुछ इंडिया के हिस्से, जो उस वक्त बेबलोनियन एम्पायर के अंडर थे, फारस के अंडर थे, फारस के बादशाह के। तो ये चार मुल्क उसमें आ जाते हैं, लेकिन प्रीडोमिनेटली कौन सा मुल्क है? ईरान, मॉडर्न ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। तो फिर हम किस पॉइंट पे पहुंचते हैं? पर्शिया कौन से लोगों को पेश कर रहा है? मुस्लिम नेशंस को। तो हम किस पॉइंट पे पहुंच रहे हैं कि आर्मेगेडन की वॉर में, जहां पे यूरोप होगा, जहां पे इसराइल होगा, उसकी आर्मीज होंगी, रशियन होंगी, और क्या नजर आ रहा है कि मुस्लिम नेशंस होंगे। हां जी, अगला नाम है कूश और
फूत,
कुशाइट्स, कश एंड पुट। अब ये नेशंस कौन सी हैं और ये लोग कौन थे? जब हम हिस्ट्री में जाते हैं, कूश और फूत ये दो भाई हैं और ये दो बेटे हैं और ये हाम के बच्चे हैं, नू का जो बेटा हाम था उसके ये दो बेटे हैं। और ये जिन इलाकों में जाके सेटल डाउन हुए, अगर उनको उन इलाकों को देखा जाए और उनको स्टडी किया जाए, तो ये दो जो नेशंस बनती हैं वो है इथोपिया, कूश और लीबिया, फूत, लीबिया। कूश जो है, ये जो जिस हिब्रू वर्ड में से निकला है, इसका मतलब है ब्लैक, ब्लैक पीपल, ब्लैक, ब्लैक रेसेस, ब्लैक नेशंस। तो अफ्रीका की जो काली नेशंस हैं, इथोपिया जिनकी एक तरह से नुमाइंदगी करता है, वो इसमें पॉइंट आउट हो रही हैं। और कूश का जो इलाका है, ये इनमें ये नेशंस आती हैं, लीबिया, अल्जीरिया, तुनिसिया, मोरक्को, मोरितानिया। और एक बार फिर जब आप इस पांचवें ग्रुप को देखते हैं कि ये कौन सी नेशंस हैं, तो आप किस पॉइंट पे पहुंचते हैं? मुस्लिम नेशंस हैं। सो जो पॉइंट बार बार इसमें स्ट्रेस हो रहा है, स्केल 38 में 39 में, कि रशियन नेशंस का और मुस्लिम नेशंस का आखिरी जमाने में एक कोलेशन होगा। छठी आयत,
जुमर और उसका तमाम लश्कर और शमाल की दूर इतराफ के अहले तुजरमा,
जुमर और अहले तुजर्मा उमर एक बंदे का नाम है, ये याफत का बेटा है। पहले भी हमने इसके बेटों के बारे में पढ़ा, ये जैफत का बेटा है और मिगोग का भाई है, और ये जिस जगह पे सेटल हुआ वो ईस्टर्न यूरोप था। झूमर, ये आपने जरा इसको नोट इसलिए रखना करना है क्योंकि इसका ताल्लुक ईस्टर्न यूरोप के साथ है, और ईस्टर्न यूरोप आज वो मुल्कों का ग्रुप है जहां पे आरसी जो है रोमन कैथोलिकिज्म सबसे ज्यादा है, कंट्रोलिंग और जो डोमिनेटिंग रिलीजन वहां पे है, अकायद हैं वो क्या है, रोमन कैथोलिक। झूमर, सो अब एक तीसरा, एक चौथा एलिमेंट हम इसमें देख रहे हैं। पहले हम देख रहे हैं एक डिमोनिक स्पिरिट, फिर हम रशियंस को, फिर हम मुस्लिम वर्ल्ड को, अब हम कैथोलिक वर्ल्ड को इसमें इस सीन में शामिल होते हुए देख रहे हैं। झूमर और अहले तुजर्मा, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप जब दोबारा से इनको पढ़ेंगे, कई लोगों के लिए तो ये सारा कुछ फारसी और ग्रीक है, लेकिन कई लोग जो मेरी तरह समझदार हैं वो समझ रहे हैं कि हमें क्या समझाया जा रहा है, तो कई बाद में समझेंगे हमें क्या समझाया गया था। लेकिन जो बैत क्या है नाम, तुजर्मा,
अहले तुजर्मा,
अहले तुजर्मा इंग्लिश में है बैत तो गारमा। बैत का मतलब है घर, किसका घर, अहले तुजर्मा, तुजर्मा का घर। आर्मीनियंस आज भी अपने आप को कहते हैं वी आर द हाउस ऑफ तुजर्मा। आर्मीनियंस जो हैं आज भी डिक्लेयर करते हैं कि हम किसकी नस्ल से हैं, हम हमारा हमारा घर कौन है, कौन सा, और हम क्या, कौन सी नस्ल हैं, तुजर्मा। और इस आर्मीनिया कहां पे है, रशिया में, रशियन स्टेट्स हैं इसमें, टर्क्स के हिस्से, खुर्द नहीं आते इसमें, टर्क्स जो है इसमें आ जाते हैं, आर्मीनियंस और टर्क्स इस नस्ल में तुजर्मा में जो है वो आ जाते हैं। तो एक बार फिर से हम जिस चीज को यहां पे फोकस होते हुए देख रहे हैं वो रशियन इंडिपेंडेंट, और जब ये सोवियत यूनियन जो है वो ब्रेक हुआ और ये मुल्क जो है वो आजाद हुए, तो आज आर्मीनियंस एक अपनी आइडेंटिटी रखते हैं। सो ये भी उस वॉर में आगे आएंगे। और आखिरी दो हम जल्दी से देखते हैं, आगे चलेंगे 13वीं आयत।
सबा और दादन,
सबा और दादन, और आखिरी
और तरसीस,
तरसीस ये
ददान, ददान है, I'm sorry,
तीन नेशंस हम आखिर में देखेंगे, सबा और
ददान,
उर्दू में क्या है, ददान। ये नो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि ये क्लियर नहीं है किसकी बात की जा रही है, लेकिन सबा और दीदान जो हैं बाइबल में इसके दो रेफरेंस हैं। नंबर वन इसका रेफरेंस है कि ये कुश के जो कुशाइट्स हैं, कुश जो नस्ल थी उसके पोते हैं, ग्रैंडसन्स हैं। पदाइश 10 बाब उसकी 7वीं आयत में और पदाइश 25 बाब उसकी 3री आयत में आपको ये रेफरेंस मिलेगा कि ये कुश के ग्रैंडसन्स हैं। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये इब्राहिम के भी दो पोतों के नाम है, ये दो सेपरेट लोगों के, ये एक जैसे दो नाम है। इब्राहिम का एक बेटा जो कुतुरा से पैदा हुआ उसके दो बेटों के नाम भी यही थे, शीबा और दीदान। तो चाहे ये यहां पे मेंशन किया गया है कि जो कुश के पोते थे या इब्राहिम के पोते थे जो कतूरा से पैदा हुए, लेकिन जिस इलाके में ये लोग रहते हैं या आज जहां पे ये नेशंस मौजूद है, सबा सेबियंस जो हैं, सबा मशहूर था अपने जबाने में जो स्पाइसेस हैं, मसाले और जो खुशबू हैं ये एक्सपोर्ट करते थे। सो दीज टू नेशंस सबा और दीदान जो है ये अरेबियन पेनिनसुला में आते हैं। जब ये नाम लिए जाते हैं तो किसकी तरफ रेफरेंस है, अरेबिया की तरफ।
Grace Assemblies of Pakistan, a growing network of churches. खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, मैं अपनी कलीसिया की बुनियाद इस चट्टान पर रखूंगा और आलम अरवां के दरवाजे इस पर गालिब ना आएंगे। ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान रूस से मामूर और तेजी से तरक्की करती हुई कलीसियाएं हैं, जिनका मकसद हुक्म आजम की तकमील, ईमानदारों की रूहानी नशोनुमा, बतनी शिफा और आलमगीर कलीसिया को बिलअमूम और कलीसिया पाकिस्तान को बिलखसूस मसीह यीशु की दूसरी आमद के लिए तैयार करना है। इन मकासद के असूल के लिए ईमानदारों तक बाइबल की मुतवाजन और दुरुस्त तालीम पहुंचाना इंतहाई जरूरी है। ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान इसके लिए मुख्तलिफ ज़राए बरूएकार ला रही है, जिनमें नई कलीसियाएं कायम करना, खादमों की तरबियत के लिए ग्रेस बाइबल इंस्टीट्यूट और खतो खताबत के जरिए ले मिनिस्टर बाइबल कोर्स, ग्रेस बाइबल सेमिनार्स, ग्रेस स्कूल ऑफ मिनिस्ट्री और ग्रेस बाइबल पैगामात का सिलसिला शामिल है। अगर आप हमसे रابطہ कायम करना चाहते हैं तो हमारा पता ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान, पोस्ट बॉक्स नंबर 10318 लाहौर, पोस्ट कोड 54600 पाकिस्तान।